हमारी ईश्वरीय पढ़ाई के मुख्य चार सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कई बार देखा जाता है कभी एक विषय का पर्दा भारी होता है तो दूसरे का हल्का। आइए हम क्लास सुनेंगे किस तरह से इन चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाए रखे जाए। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय शीलू बहन जी, आपका इस सभा में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। स्वागत है। हम सब जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो शुरू शुरू में ही 7 दिन के कोर्स के दौरान हमें बहन जी एक कमेंट्री की कैसेट या सीडी सुनाया करती है। उस कमेंट्री के द्वारा सर्व परिचित आवाज एवं टेलीविजन के माध्यम से सुपरिचित चेहरा आदरणीय शीलू बहन जी, ये ऐसी हस्ती है जिनकी जीवा को स्वयं बाप दादा ने सरस्वती का वरदान दिया है, एक महान विभूति। 1959 में आपने विज्ञान में पदवी लेने के पश्चात 1969 में अपनी जीवन को ईश्वरी सेवा में समर्पित किया। देश विदेश में अनेक स्थानों पर सेवाएं देके 1976 से आप मधुबन महायज्ञ में सेवारत है। विशेष रूप से राजयोग शिविर एवं विदेशियों की सेवा में आपका विशेष योगदान रहता है। अफ्रीका तथा मॉरिशस में सेंटर खोलने के आप निमित्त रह चुके हैं। एजुकेशन विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। देश विदेश में यात्रा करके हजारों आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाने के आप हमेशा निमित्त बने रहे हैं। तो आइए हम क्लास सुनेंगे चारों सब्जेक्ट का बैलेंस कैसे बनाए रखें। आदरणीय शीलू बहन जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बाबा के बहुत लाडले, अति सिकीलदे प्यारे बच्चे, बहुत दूर दूर से बाप दादा से मिलने के लिए पधारे हैं। तो जितना ही आपने सफर में समय लिया, इतने दिनों का सफर होगा जब से आप निकले, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, और मधुबन पहुँचते पहुँचते आपने बाबा से तो खूब योग लगा लिया होगा कि कब हम मधुबन पहुँचे, बाबा से मिलन मनाए। तो आप सब अति सिकीलदे बच्चे हो, इनमें से कितने भी इतने भाई बहने होंगे जो इस कल्प में पहली बार बाबा से मिलेंगे। हाथ उठाएं जो पहली बार मिलेंगे। अच्छा, इतने सारे हैं। तो देखो, आपके लिए तो विशेष बाबा आएगा, जरूर आएगा। हाँ? गारंटी है ना, गारंटी, क्योंकि इतना दूर से आप आए हैं। लेकिन जैसे अभी आपका क्लास हुआ कि बाबा की भी हमारे प्रति कुछ आश है, हमारी आश तो यही है कि हम बाबा से मिले, बाबा से वरदान प्राप्त करें। पर बाबा की भी हम बच्चों में कुछ आश है कि मेरे बच्चे जो नूरे जहान है, विश्व के मालिक बने, भगवान के आंखों के तारे बने, सिर के ताज बने, दिल तख्त नशीन बने, तो बाबा की भी हमारे प्रति बहुत आश है। परंतु उस आश को पूर्ण करने के लिए और बाबा से सब प्रकार के वरदान, ब्लेसिंग्स लेने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस बनेगा तभी ब्लेसिंग मिलेगी। बाबा ये भी कहते हैं तुमको, तुम बच्चों को पास विद ऑनर बनना है, कंप्लीट बनना है, परफेक्ट बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है। बहुत बड़ा लक्ष्य बाबा ने दिया है, सर्व गुणों में संपन्न होना है और 16 कलाओं में संपूर्ण होना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनना है। तो इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, पर उसका आधार होगा हमारे अंदर के लक्षण। ये भी जरूरी है कि जितना लक्ष्य पक्का होगा उतना उतना लक्षण भी हमारे में आता जाएगा, परंतु साथ साथ जितने लक्षण होंगे उतना ही लक्ष्य के भी नजदीक पहुंचेंगे। तो लक्ष्य भी चाहिए, लक्षण भी चाहिए, अर्थात हम बच्चों को ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों का ही बैलेंस चाहिए, चारों को ही मुख्य स्थान देना है, तब हम फुल मार्क्स ले सकेंगे, तब हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे, तब हमारे अंदर सारे लक्षण भी आएंगे। तो जैसे बाबा पढ़ाई का मिसाल देते हैं कि कई तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी बहुत होशियार होते हैं, और उनका लक्ष्य होता है कि मुझे 100 out of 100 लेना है, एक मार्क भी हमारा कम न हो, पूरे 100 marks होने चाहिए। और जब उनकी रिजल्ट आउट होती है, इतना विश्वास होता है कि हमको 100 out of 100 मिला होगा, पर जब रिजल्ट आउट होती है तो कईयों को मान लो 90% मिला, तो उनको संकल्प आता है 90% क्यों मिला, मुझे तो 100% मिलना चाहिए था इस सब्जेक्ट में, इसमें 90% ही क्यों मिला, मेरे 10% कहाँ चले गए। तो 10% 10% मेरे कम हुए, ये उनको खलता है। और कई तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना जो एग्जामिनेशन पेपर है वो खुलवाते हैं कि ये एग्जामिनर की भूल होगी, मेरी भूल नहीं है, मुझे 100 out of 100 मिलना चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है कि वो एग्जामिनर की मिस्टेक होती है और उसको कम मार्क्स दे दिया, और स्टूडेंट को इतना विश्वास होता है। तो जो ब्रिलियंट होशियार स्टूडेंट होता है वो अपनी मार्क्स 100 से गिनती करता है, 100 मिलना चाहिए, 99 भी नहीं। परंतु जो डल विद्यार्थी होगा, हमेशा फेल होने वाला, और एक बार उसको 40% या 50% मिल भी जाए, इतना खुश हो जाता है, वाह मैं तो पास हो गया, मैं तो पास हो गया, खुश हो जाता है। और वो 99% में भी सोचता है 1% कहाँ गया। तो क्या अंतर है दोनों स्टूडेंट्स में? दोनों स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो होशियार स्टूडेंट होता है वो 100 से गिनती करता है, और जो डल होता है वो 0 से करता है। कॉन्ट्रास्ट है ना? तो 0 से करता है तो इसलिए कहता, अरे 40 मिल गया, बहुत अच्छा, पास हो गया। आजकल शायद 50 किया है पासिंग मार्क्स, या 40 होगा पता नहीं, लेकिन वो 0 से करता है। और वो 1% भी कम तो एक परसेंट भी कम क्यों? अब हमको क्या करना है? 100 से भेंट करना है या 0 से भेंट करना है? किससे भेंट करना है? 100 से भेंट करना है, पर कई तो 0 से भेंट करते हैं। जब उनको हम कहते हैं ना, हमको तुम ऐसे देवता बनना है, ऐसा संपूर्ण बनना है, हाँ ऐसा पावन बनना है, आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाए, ऐसा लक्ष्य रखना है, तो कई कहते बहन जी मैं तो बहुत खराब था, मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था, बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, बहुत बुराइयां थी मेरे अंदर, बहन जी बाबा का बनने के बाद मैं तो बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ, तो बहुत बदल गया हूँ इसी खुशी में रहते हैं, परंतु और आगे करना वो भूल जाते हैं, बहुत बदल गया हूँ, क्योंकि आने के बाद बदल तो जाते हैं ना। बाबा ने जितना ऊंचा ज्ञान दिया है, इतना ऊंचा योग सिखाया है, इतनी ऊंची धारणा की बातें बाबा करते हैं, इतने सेवा का प्लान्स देते हैं, बच्चे कैसे सेवा करो, चारों सब्जेक्ट्स के बारे में हर मुरली में बाबा कुछ न कुछ कहते ही हैं। तो बाबा की मुरली तो रोज सुनते हैं, धारणा भी करते हैं, रोज पॉइंट्स भी नोट करते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, विचार सागर मंथन भी करते हैं, खुशी में भी रहते हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ते हैं। इसका कारण है कि जो पिछला जीवन बाबा का बनने से पहले था उससे अभी की भेंट करते हैं और कहते बाबा मैं तो बहुत बदल गया, मैं तो बहुत बदल गया हूँ, बड़ा खुश होते हैं, अनुभव सुनाते हैं, बहुत बदल गया हूँ। इस अनुभव को सुन करके दूसरे व्यक्ति बहुत खुश होते हैं और उनके प्रभाव में आते हैं कि ये भी इतना बदल गया तो ये ज्ञान कितना अच्छा होगा। लेकिन बाबा कहते इतने हद में खुश मत हो जाओ, क्योंकि तुमको संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, पास विद ऑनर होना है, सम्मान के साथ घर जा सको बिना कोई सजा खाए, और सबसे पहले नंबर में आ सको, श्री कृष्ण के साथ रास कर सको, इतना ऊंचा लक्ष्य। अब इतने ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए बाप समान बनना होगा, बाप के हर कदम पर कदम रखकर फॉलो करना होगा, बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया। करुणाबाई ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि मम्मा से जब पूछा गया, मम्मा आप तो राधे बनेगी, आप तो कृष्ण बने, आप तो लक्ष्मी बनेगी, मम्मा आपको कितनी खुशी हुए, तो मम्मा ने कहा वो खुशी कुछ भी नहीं है, अभी जो भगवान मिला है उसकी खुशी की भेंट में, वो खुशी तो कुछ नहीं है। अब ये खुशी हमको भी क्यों नहीं है, मम्मा को तो बहुत थी, लेकिन हमको भी कोई कम नहीं है। कम है क्या आपको कि भगवान मिला? बहुत खुशी है, लेकिन उस खुशी का क्या सदुपयोग कर रहे हैं? क्या सचमुच भगवान मिलने से हमको जो भगवान के वरदान मिल रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहा है, जो शक्तियां मिल रही है, जो गुण मिल रहे हैं, वो कितना हम अपने अंदर भर रहे हैं? और फिर केवल भर ही नहीं रहे हैं, कितना हम दूसरों को बांट रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ा धन है, गुण बहुत बड़ा धन है, शक्तियां बहुत बड़ा धन है। तो ये धन ऐसा है जितना हम बांटते हैं उतना हमारा बढ़ता है, वो धन बांटने से तो खूट जाएगा, कम तो होता ही जाएगा, पर ये धन जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो ये जो चार मुख्य हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारा चारों पर ही इक्वल समान ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं लौकिक में भी पढ़ाई में हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में बहुत होशियार होते हैं, कोई स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में बहुत होशियार होते हैं। सभी सब्जेक्ट्स में एक समान होशियार नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी मदार है, कितना इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। हाँ, जैसे हमारा, मैं अपने कॉलेज लाइफ का अनुभव सुनाती हूँ कि मेरा भी मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, परंतु बायोलॉजी लिया तो बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, क्या काटना कूटना, ये कॉकरोच और मेंढक और ये सब, साइंस की स्टूडेंट थी, पर मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसमें तो 100 out of 100 लाती थी। और ये जुआलॉजी और बाकी बातों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए कई कहते थे अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो फेल हो जाओगी। चार, आपको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखना ही है, क्योंकि नहीं तो पास नहीं होंगे। तब मेरी बुद्धि में आया कि खाली इंटरेस्ट की बात नहीं है, अगर हमको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स में उतना ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो अभी तो हम ईश्वरीय विद्यार्थी बने हैं और अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दादी जानकी जी से भी आप पूछो, दादी आप तो 100 साल के हो गए हैं, अभी तक आप पढ़ रहे हैं? कहती, मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ। 100 साल की तो क्या समझती, वो 00 तो कट गया, एक ही हो, एक साल एक साल की। जब देखो दादी हमेशा मुरली पढ़ रही है, जब भी मिलने जाओ कुछ न कुछ पढ़ रही है, इतना इंग्रॉस्ड होती है उसमें, इतनी कंसंट्रेशन होती है दादी की। अगर हम जाते भी न तो ऐसे नहीं, हाँ सीधा ही सिर उठाएगी, नहीं पढ़ती रहेगी। हम दादी के पास जाके बैठते हैं, फिर दादी कहते अच्छा आप आए, तो पर ऐसे नहीं हम आए और सीधा ही ध्यान देती, क्योंकि जब वो पढ़ती है ना इतनी लगन से, इतने इंटरेस्ट से, एक एक बात को 2 बार 3 बार पढ़ेगी, अपने अंदर धारण करेगी। और इस उम्र में भी दादी को पूरी मुरली याद होती है, कभी भी उनसे पूछो आज बाबा ने ये कहा, सीधा क्लास कराएगी, जरूर बताएगी, हम लोग तो भूल जाएंगे। तो अपने को इतना स्टूडेंट समझती है, मैं विद्यार्थी हूं ये समझती है। तो इसलिए हम कितना अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं, कोई 100 साल वाला भी अपने को विद्यार्थी समझे, अभी आप तो सब जवान बैठे हो तो अपने को कितना स्टूडेंट समझते हैं। चलो कोई बुजुर्ग भी होगा, लेकिन अंत तक जहां तक जीना है तहां तक पीना है, ये बुद्धि में सदा रहना चाहिए। क्योंकि टीचर बैठा है, टीचर ने अभी तक छुट्टी नहीं ली है, पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, बाप दादा अभी तक पढ़ा रहे हैं। जब बाप दादा की पढ़ाई पढ़ाना पूरा हो जाएगा तो सबका वापस जाना शुरू हो जाएगा, है ना? तब तक, जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं ये हमको देखना है। तो ज्ञान क्या है, हम केवल इसको ज्ञान भी न कहें, क्योंकि दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बताया ना करुणा बाई ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, कि अगर बहुत सारा उनको सुनाओ कहेंगे ये तो बस आया अभी बोलना शुरू कर दिया तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है दुनिया में। पहले जमाने में हम सुनाते थे तो यही कहते थे, बहन जी आप जो सुनाते हो ना वो भी ऐसे ही सुनाते हैं, दूसरे वाले भी ऐसे ही सुनाते हैं, आप भी अच्छा सुनाते हो पर वो भी अच्छा सुनाते हैं, अच्छा सुनाते हो, इतना कहते थे। लेकिन धीरे धीरे समझने लगे कि नहीं, ये तो इस ज्ञान में तो कोई नवीनता ऐसे नहीं, वो भी ऐसे ही सुनाते हैं, ये कुछ अलग है बातें। तो अभी पूछने लगे ऐसे कैसे, प्रश्न कर रहे हैं। पहले तो प्रश्न करने का कोई सवाल ही नहीं होता था, बहुत अच्छी बात सुनाते हो, परंतु अभी इंटरेस्ट से सुनना चाहते हैं, क्योंकि लॉजिक अपनाते हैं, समझते हैं कि अभी तक तो अंधश्रद्धा में ही हम थे। तो ज्ञान, तो केवल ज्ञान कहने से इतनी समझ नहीं आएगी, दुनिया में भी बहुत ज्ञान है, परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान है, स्वयं परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जो बीज के समान है। कई ये पूछते ना, आप लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं? हम कहते हैं शास्त्र तो द्वापर युग से पढ़ते ही आए, बहुत पढ़े हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई एक भी मिस नहीं किया, बहुत कुछ हमने पढ़ा शास्त्र। लेकिन अब हमको सच्चा ज्ञान मिला है, क्योंकि परमात्मा ने आकर के सभी शास्त्रों वेदों का सार हमें बता दिया है। भले वो शास्त्र अब न भी पढ़े, परंतु सार पता होने के कारण वो विस्तार को समझना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अभी परीक्षा का समय नजदीक है, जैसे परीक्षा का समय नजदीक होता है तो सारी बैठ के सिलेबस का पूरा साल की पढ़ाई थोड़ी दोबारा पढ़ते हैं, नहीं। लेकिन जो परीक्षा पेपर में क्वेश्चंस आएंगे या इम्पोर्टेंट है, कुछ बहुत जरूरी है, उसको ही फिर से अध्ययन करते हैं और सार को स्टडी कर लेते हैं। तो सार को समझ लिया माना विस्तार अपने आप बुद्धि में आ जाएगा। तो अभी जो भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये सभी शास्त्रों वेदों ग्रंथों का जितने भी कुछ धर्म के नाम पर कुछ भी बना है, सब का भगवान सार बताते हैं। यहां तक कि सभी धर्मों का भी सार बताते हैं। बाबा क्राइस्ट को भी याद करते हैं, बुद्ध को भी याद करते हैं, गुरु नानक को भी याद करते हैं, शंकराचार्य को भी याद करते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा तो सभी धर्म पिताओं का भी पिता है ना। उन धर्मों को भी बाबा याद करते, उनके बारे में भी बताते हैं कि कैसे वो धर्म पिताओं की आत्माएं भी अभी कहाँ हैं, अपने अंतिम जन्म में हैं, उस तमो प्रधान स्थिति में हैं, बाबा उनका भी लेखा जोखा देते हैं। इसीलिए क्योंकि बीज है ना, सच्चित आनंद स्वरूप है शिव बाबा, सारे कल्प वृक्ष का बीज है, तो सारे कल्प वृक्ष का पूरा ज्ञान है उनके अंदर। हालांकि बाबा इस चक्र में आते नहीं हैं, लेकिन इसका पूरा ज्ञान है क्योंकि बीज है। कई कहते हैं ना, बाबा ने सतयुग तो देखा नहीं, तो सतयुग का ज्ञान कैसे है बाबा के अंदर? देखा ही नहीं है तो ज्ञान कहां से कैसे आया? लेकिन देखने से ही ज्ञान है क्या? कई चीजें देखते नहीं है पर फिर भी ज्ञान है, दिखाया है, देखा नहीं है पर ज्ञान तो है ना। इसीलिए बाबा भी कहते हैं मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज हूं। तो ज्ञान क्या है? जो आध्यात्मिक ज्ञान भगवान हमें इस समय दे रहे हैं, जिसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो दुनिया में कोई नहीं दे पा रहा है। भले आत्मा परमात्मा बहुत कहते हैं, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान क्या होता है आत्मा और परमात्मा का, वो तो किसके पास भी नहीं है। बाबा यहां तक कहते नेति नेति कह दिया, वेदों ने नेति नेति कह दिया, नहीं जानते, नहीं जानते। भले इतनी पोथी पढ़ते पढ़ते पंडित बन गए, बड़े विद्वान बन गए, सारे शास्त्र कंठ कर लिए, लेकिन जैसे कबीर ने कहा न, पोथी पढ़त पढ़त पंडित बया न कोई, बस ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले वही पंडित होए, बस वो सार आ गया ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ने से, वही सार है। क्योंकि वो जीवन में आ गया ज्ञान, वो जीवन में अगर ज्ञान नहीं आया तो बाकी ज्ञान किस बात का। इसलिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये ज्ञान आज किसके पास भी नहीं है, भले कितना भी पढ़ लेते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं मैं सारे ज्ञान का सार तुम बच्चों को सुना रहा हूं, ताकि अब विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है, अब रचयिता ने अपनी रचना का पूरा भेद बता दिया है, जो कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं रहती, इतना सारा अपना भेद और अपनी रचना का भेद दे दिया है। कोई भी कुछ प्रश्न करे हम उसका उत्तर दे सकते हैं, दे सकते हैं ना कि नहीं दे सकते हैं? जो समझते दे सकते हैं हाथ उठाए। हाँ, सब ज्ञानी तो आत्माएं बैठे हैं यहाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हमारा टीचर है कौन? कोई साधारण टीचर नहीं है, केवल पिता ही नहीं है, वो टीचर भी हमारा इस समय हमें पढ़ा रहा है। किसी का बहुत बड़ा टीचर होता है तो उसको बड़ा नशा होता है। मुझे याद है एक बार एक भाई आया था, बड़े नशे से अपना परिचय दे रहा था कि मैंने पीएचडी की है। और किससे पीएचडी की है? उसने कहा कि मेरा जो प्रोफेसर था जिसके अंडर मैं पीएचडी कर रहा था वो सर्वपल्ली राधा कृष्णन था। हाँ, जो उस समय के राष्ट्रपति थे भारत के, लेकिन वो बहुत बड़े प्रख्यात प्रोफेसर थे, तो इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तो उनके अंडर मैंने पीएचडी की उनसे। तो इतने नशे से वो कहता था, अपने टीचर का परिचय देता था। तो हमारा टीचर कौन है? हमारा टीचर कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, कोई एक देश का राष्ट्रपति बना ऐसा नहीं है, परंतु सारे विश्व का पिता, सारे विश्व का शिक्षक, सारे विश्व का सतगुरु, वो हमारा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है। तो पूरा तीसरा नेत्र ही हमारा खोल दिया है, आदि मध्य अंत का राज हमें पूरा समझा दिया है, जो मन में कोई संशय उठ ही नहीं सकता है। और अगर कोई बात अभी नहीं समझ में आती है, उसमें भी जरूर कोई राज है जो बाबा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं जो शुरू में पढ़ाते हैं, अंत की पढ़ाई थोड़ी शुरू में बताई जाती है, धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ताकि धीरे धीरे समझ में सब आ जाए। इसी प्रकार बाबा अंत की पढ़ाई अभी नहीं पढ़ाएंगे, कुछ सस्पेंस भी रखेंगे। जैसे कोई फिल्म होती है ना, पिक्चर होती है, कहानी तो पूरी बनी हुई है, सब कुछ पता है, सब फिक्स्ड है, लेकिन जब पूछा जाता है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो जिसको पता है वो कहेगा नहीं नहीं आप देखो, आपको मजा आएगा, क्योंकि अभी बता दिया तो मजा चला जाता है। इसीलिए मजा चला जाएगा, इसलिए बाबा नहीं बताते। ऐसे नहीं कि बाबा बता नहीं सकते हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन मजा चला जाएगा, क्योंकि ये मजे की सीन्स है। अंत में कैसे दृश्य होंगे उसके लिए बाबा हमको तैयार तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अचानक का पाठ भी पढ़ाया है, एवर रेडी का पाठ भी पढ़ाया है, बहुत काल के अभ्यास का भी पाठ पढ़ाया है, तो वो तो अंत का पाठ तो पढ़ा ही दिया है बाबा ने, परंतु वो पाठ प्रैक्टिकल में देखने के लिए वो तो अंत का इंतजार करना ही होगा। पर उस समय अगर हम तैयार नहीं होंगे तो फेल हो सकेंगे, इसीलिए बताते नहीं हैं। बता दे तो फिर वो मजा ही चला जाए, पर तैयार रहे ये जरूर बाबा हमें सावधान कर रहे हैं। और परीक्षा का पेपर क्या होगा वो भी बाबा ने बता दिया है। हाँ देखो, दुनिया में होते ना एग्जामिनेशंस होते हैं, परीक्षाएं होती है, वो कहाँ होने वाली है परीक्षा, कब होने वाली है, कितने समय का पेपर है, कितने मार्क्स का पेपर है, वो सब पहले से मालूम होता है, लेकिन वो पेपर में कौन से प्रश्न आएंगे वो नहीं मालूम होता है, बाकी सब पता होता है। और यहाँ इसका बिल्कुल अपोजिट है, वो परीक्षा अंत की कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, किसके द्वारा आएगी, वो कुछ पता नहीं, लेकिन परीक्षा का प्रश्न क्या वो मालूम है, क्या प्रश्न होगा और उसमें एक सेकंड का जवाब है केवल। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें खाली हाँ और ना में जवाब देना होता है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, या तो यस या तो नो, बस यही लिखना होता है। तो हमारी जो अंतिम परीक्षा का पेपर का क्वेश्चन एक ही होगा और उसका जवाब हाँ या ना का, इसलिए एक सेकंड का पेपर है। और वो कौन सा क्वेश्चन होगा कि उस समय हमारी अंत की स्थिति कैसी थी, अशरीरी स्थिति बनने में कितना समय लगा, एक सेकंड लगे तो हम फुल पास हो जाएंगे, बस एक क्वेश्चन का पेपर और खाली हाँ ना में। ये नहीं कि 50% अशरीरी स्थिति रही, 80% रही, 90% रही, तो भी 90% ही मार्क्स मिलेंगे। है एक सेकंड का ही पेपर, लेकिन वो एक सेकंड में अशरीरी स्थिति हो जाए उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और उसके लिए सदा एवर रेडी बनना है, क्योंकि अचानक होगा। इसलिए ये तीनों बातें बाबा ध्यान पर देते हैं, पर तो इसलिए प्रश्न पेपर आउट है, वो क्वेश्चन हाँ और ना का ही है, एक सेकंड का ही है, लेकिन बाकी कुछ पता नहीं, और उसकी सस्पेंस बाबा रख रहे हैं ताकि बच्चे सदा ही तैयार रहे, क्योंकि अगर सदा तैयार नहीं रहेंगे तो धोखा खा सकते हैं। तो ज्ञान में भी पूर्ण बनना है, ज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आत्मा परमात्मा कर्म का ज्ञान चक्र का ज्ञान, यहाँ तक कि बाबा माया का भी ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में माया का भी ज्ञान नहीं है, किसी से पूछो माया क्या है, कहेंगे धन संपत्ति माया है, कहेंगे पत्नी माया है, बच्चे माया है। हाँ, सन्यासी यही कहते हैं, उनको कहो कि ये धन माया है तो कहेंगे हाँ ये सब माया, धन माया नहीं है, कहेंगे नहीं धन ही माया है, स्त्री माया है, ये सब बच्चे माया है, संसार माया है, बस हमें तो इस माया को छोड़ना है। और भगवान ने माया का ज्ञान दिया है कि ये सब माया नहीं है, धन माया नहीं है। धन तो जरूरी, आज भी बाबा ने कहा धन तो आवश्यक है, सतयुग में धन तो होगा, लक्ष्मी स्वयं साक्षात धन की देवी विराजमान है, तो धन को माया नहीं कहेंगे, स्त्री को माया नहीं कहेंगे, वो तो शक्ति है, शिव की शक्ति है, माया थोड़ी है। बच्चे भी माया नहीं है, वो तो महात्मा है। अब महात्मा कहा बाबा ने, शक्ति कहा और वो संपत्ति को आवश्यक कहा, तो माया क्या चीज है ये भी दुनिया को पता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये विकारों को ही माया कहेंगे, जिनको तुम्हें जीतना है, उस माया का ज्ञान भी भगवान हमें दे रहे हैं। और माया किस किस रूप में आती है, कैसे आती है, उस वो भी बाबा बताते हैं। ऐसे नहीं एक ही रूप में सदा आएगी, जैसे आतंकवादी है ना आजकल, एक ही रूप से नहीं वो अटैक करते हैं, कितने उनके अलग अलग रूप होते हैं अटैक करने के, जब पता ही नहीं पड़ेगा वो आतंकवादी कैसे आएगा, क्या किस प्रकार से वो आक्रमण करेगा, कुछ पता नहीं चलता है। अलग अलग रूप होते हैं, एक जैसा नहीं होता है। तो माया भी तो आजकल आतंकवादी बन गई है ना, हाँ, कहाँ से किस रूप से आएगी, कैसे आएगी, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बाबा के बच्चे भी कम नहीं है, हाँ, वो आतंकवादी अपना डराते हैं तो सरकार कहती है हम भी कम नहीं है, हमारे पास भी मिलिट्री है, हमारे पास भी ये है, हम उसको खत्म करेंगे। तो हम बच्चे भी क्या कहते हैं, माया आने दो, किस भी रूप में हम तैयार, तो किस भी रूप में हम तैयार बैठे, तैयार है ना, कि डर जाएंगे माया से, डरने वाले नहीं है। तो इसीलिए पूरा ज्ञान है हमें, परंतु ज्ञान को हम अगर एक शब्द में कहें तो ज्ञान सार है, ज्ञान बीज है, और बीज को समझ लिया माना पूरे झाड़ को समझ लिया। फिर योग क्या है, योग है उस ज्ञान रूपी बीज को सींचना, बीज को सींचते हैं तब उस बीज से अंकुर निकलता है, तो अंकुर भी तब निकले जब उसको सींचे, अगर उसको सींचेंगे नहीं तो अंदर जो बीज में सुषुप्त शक्ति है, जो सोई हुई शक्ति है, उसको धरती में डालने से, धूप मिलने से, जल मिलने से, पांच तत्वों का साथ मिलने से उस बीज की शक्ति का विस्तार होता है। तो ज्ञान तो सार है, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी दुनिया में तो विस्तार विस्तार होते 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 असार बन गया है, बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो डाइल्यूट ही हो जाएगा ना, तो डाइल्यूट जैसे होता गया वह सार बनता गया, शक्ति खत्म होती गई है। परंतु जितना सार युक्त बनेंगे उतना शक्तिशाली बनते हैं, और जितना शक्तिशाली बनते हैं उतना अंतर की शक्ति का विकास होता है और वो फिर कर्म में आता है। पर उसके लिए योग रूपी जल है, जैसे बाबा ने हमको बताया तुम आत्मा हो, तो वो बाबा बार बार आत्मा हो आत्मा हो। आज भी बाबा ने कहा ये भूलो मत मैं कौन हूं, मैं आत्मिक स्थिति में रहूं, आत्मा समझकर बाबा को याद करना, ये हमारा योग है। और वो योग नहीं है जो दुनिया में करते हैं। बाबा ने तो इतना सुंदर रूप बता दिया, क्योंकि आत्मा समझकर बाप से सर्व संबंध जोड़ना ये योग माना, जिससे आत्मा की शक्तियों का विकास होगा। क्योंकि किससे कनेक्शन कर रहे हैं, जो सर्व शक्तिवान है, जो सर्व गुणों का सागर है, उनसे कनेक्शन होते ही उनके सारे गुण हमको मिल जाते हैं, वो अनुभव होने लगता है। जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागने लगती है, उसका अनुभव इतना सुंदर होता है कि मैं आज अगर मुझे कहे कोई नहीं नहीं आप तो बहुत अशांत हो, हम कहेंगे नहीं मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। दुनिया में उनको कहो लोगों को आप शांत स्वरूप हो, कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत अशांत हूं। और हम लोगों को कोई कहे नहीं आप तो अशांत, तब कहेंगे काहे को अशांत है हम तो बहुत शांत में है। बताया ना करुणा बाई ने बहुत सुंदर बात कही कि हम लोगों को देख करके लोग कहते आप लोगों के चेहरे सदा प्रसन्न है, सदा ही आप लोग मुस्कुराते रहते हो। मेरे को तो एक बार आश्चर्य हुआ कि एक किसी व्यक्ति ने मेरे से एक प्रश्न किया, कहा मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा पूछो, यहाँ तो कुछ पर्सनल तो कुछ है ही नहीं। तो कहा कि आप सदा ही मुस्कुराते रहते, आप थकते नहीं है मुस्कुरा करके। मैंने कहा ये कोई प्रश्न होता है क्या? आप इतना सारा जब भी देखो आप बोलते हैं तो भी मुस्कुराकर बोलते हैं, आप इतना यानी खुशी से बोलते हैं, बड़े उमंग से बोलते हैं, तो आप थकते नहीं है क्या? हम कहते क्यों थकेंगे, और मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि हम इस प्रकार से बोल रहे हैं, ये तो इतना नेचुरल है, क्योंकि अंदर में जो होगा वही बाहर आएगा। बताए ना कि वहां लंदन में गए तो बिल्कुल लोग एक दो को देखते भी नहीं है। ट्रेन में हम चढ़े, हम सोचा कि देखो मिलेंगे लोगों से, लेकिन सबकी शक्ल एक जैसी, सबकी एकदम सूरत ऐसी, मैं जैसे मायूस उदास बस अपने में खोए हुए। तो क्या हुआ कि उसी समय किसी ने किसी के सामने मुस्कुराया, किसी ने मुस्कुरा दिया, उसको जानता नहीं था मुस्कुरा दिया। तो वो जिसके सामने एक जिस व्यक्ति ने मुस्कुराया वो तो बड़ा इनोसेंटली मुस्कुराया, तो दूसरे ने कहा उसको आर यू मैड, तुम पागल हो क्या, ये मैंने मुस्कुरा रहे हो, कोई जानते तो है नहीं और मुस्कुरा रहा है। अरे कोई भी हो तो भी क्या मुस्कुराना क्या बुरा तो नहीं है और ही अच्छा है, लेकिन वो समझ से हम जानते नहीं है ये मुस्कुरा क्यों रहा है। यानी इतने हद तक वो टेंशन में रहते हैं, जैसे एक दो को पूछना तो क्या देखना भी नहीं, ऐसी स्थिति है। दुनिया में तो बहुत कुछ देखते हैं और भाग ही रहे हैं भाग ही रहे हैं। जापान में हम गए, वहां तो लोग सब कुछ खड़े खड़े करते हैं, बैठ करके आराम से बैठे, कोई उसके लिए टाइम ही नहीं है, खड़े खड़े दौड़ रहे हैं, रास्ते में भी दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, जैसे कि कोई टाइम ही नहीं है। इतना टेंशन है बात मत पूछो, हर जगह गए। तो इसलिए हम तो कहते हैं हमारा भारत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भारत, इतना प्यार प्रेम है, इतना प्यार प्रेम है, जो एक भले एक दो को जानते भी नहीं है परंतु अगर कोई एक मुस्कुरा देता है तो दूसरा भी मुस्कुराएगा, ये नहीं सोचेगा ये कोई पागल है क्यों मुस्कुरा रहा है। क्योंकि और जब हम बाबा के बच्चे बनते तो भले पहली बार भी मिले होंगे, वो ओम शांति कहता है तो हम कितना प्यार से ओम शांति कहते हैं, भले जानते नहीं है पर ये तो जानते ना कि ये बाबा को जानता है, इनको बाबा का ज्ञान है, भले पहली बार मिल रहे हैं। और ये भी ज्ञान है कि कल्प पहले तो मिले ही हैं, कोई नए तो नहीं है। इसलिए बाबा भी जब बच्चों से मिलते थे, पहली बार भी मिलते थे, तो बाबा उनकी परीक्षा लेते थे। बच्चे पहले भी कभी मिले हो तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ा के आती थी, जब बाबा आपसे ये पूछे तो आप बताना हाँ बाबा कल पहले मिले थे, हाँ, ये नहीं कहना बाबा मैं तो पहली बार मिल रहा हूं, ऐसे नहीं कहना, तो फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट तो फेल पर टीचर भी फेल। तो इसीलिए ज्ञान माना समझ, परंतु फिर उसका योग, योग माना वो समझ जो हमें मिली ज्ञान की, उसको हम अपने अंदर में अनुभव करें। तो अभी हमें कोई नहीं कह सकता है कि आप शांत स्वरूप नहीं हो, कोई नहीं हमें कह सकता है कि आप दुखी हो, कोई पूछ भी नहीं सकता है कि आप कैसे हो ना? बाबा कहते हैं कोई पूछे आप कैसे हो तो बोलो हम दिखाई कैसे देते हैं। कोई बीमार होता है, कोई एकदम बहुत मायूस दुखी, तो उनसे पूछना होता है कैसे हो। अब हम लोगों से कोई पूछे तो ये भी एक इंसल्ट है। इंसल्ट है कि नहीं है? यानी क्या चेहरे से कुछ पता चलता है क्या कि कोई उदास है या दुखी है? ना ना, दुख तो सब छोड़ आए ना, कि साथ में लाए हैं यहाँ पर अपने दुख कष्ट, नहीं छोड़ आए, सदा के लिए छोड़ आए या केवल थोड़े समय के लिए छोड़ आए घर में? सदा के लिए छोड़ आए, क्योंकि हमको मिला कौन है? वो नशा इतना सुंदर है हमारे अंदर, जो नशे की भेंट में बाकी जो कुछ भी है वो तो कुछ है ही नहीं, ये सब विनाशी है, सब क्षणभंगुर है, सब अल्पकाल का है। तो बिल्कुल जैसे योगी आत्मा ही हम बन जाते हैं। हमारा योग कोई आधे घंटे एक घंटे का नहीं है। आज भी बाबा ने कहा, कई कहते बाबा फुर्सत नहीं मिलती। हाँ बाबा कहते फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर शक्ति कहाँ से भरेंगे? और वास्तव में कुछ निकालने की भी बात नहीं है, कितना समय मिल जाता है बाबा की याद में रहने के लिए। बाबा ने एक बार बहुत सुंदर युक्ति बताई थी, आप पानी पीते हो, उस समय पानी पीते से पहले भी आप 2 सेकंड बाबा को याद करो, एक एक सिप पीते हो तो भी याद करो, भोजन खाते हो तो भी याद करो, चल रहे हो तो भी याद करो, कोई कार्य कर रहे हो करने से पहले याद करो, भले उस कार्य में आपको बुद्धि लगानी पड़ती है, लेकिन मैं कौन और मैं किसका ये थोड़ी कम भूल सकते हैं। बस यही तो हमारा योग है। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं कहने की आदत है तो उस आदत को थोड़ा परिवर्तन करके मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना की बजाय मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, ये भी योग है। मेरा 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 ये कहने की आदत है, बस थोड़ा परिवर्तन करके मेरा बाबा, ये भी योग है। और जैसे ही कहा मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये योग है, तो अंदर में शक्ति का आपको अनुभव होगा, क्योंकि कनेक्शन हो गया बाबा के साथ। तो योग क्या है? उस ज्ञान को सींचना, जिससे जो सोई हुई आंतरिक शक्तियां हैं उनका विकास होता है, वो अनुभव होता है आत्मा को। क्योंकि ये जितनी भी आंतरिक शक्तियां हैं ये कोई बाहर से तो आएगी नहीं, ये चिंतन से ही अनुभव होगी। तो जितना ज्ञान है उसका मनन करो, चिंतन करो, वर्णन करो, इसी से ही अनुभूति आपकी बढ़ेगी। आपके मुख पर और कुछ नहीं आना चाहिए ज्ञान के सिवाय। संसार की बातें चलो लौकिक कुछ कारोबार है वो 2 मिनट बस, बाकी तो जरूरत नहीं है। ऊंची आध्यात्मिक ज्ञान की बातें आपके मुख से निकलनी चाहिए, जिसको बाबा कहते रूप और बसंत बन जाओ। रूप हाँ, आपका योगी चेहरा, और बसंत माना ज्ञान ही प्रकट हो आपके मुख से, ज्ञान की वर्षा होती रहे। तो इससे क्या होगा? दूसरों की सेवा हो जाएगी, आपकी अपनी धारणा भी उनको दिखाई देगी। तो धारणा क्या है? धारणा है जैसे बीज को पानी देते हैं, पेड़ उगता है, बड़ा होता है, बड़ा होते 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 उसमें फूल निकलते हैं। तो धारणा माना फूल। अब फूल में क्या होता है? फूल भी वैरायटी होते हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं। तो फूल में रूप भी होता है, बड़े सुंदर फूल होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। फिर रंग भी होता है, रंग भी कितने सुंदर सुंदर होते हैं फूलों के। अभी बीच में आई ना किसी भाई ने 100 फूल अलग अलग देशों के फूल, बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी फूलों का हार बना करके 100 फूलों का हार दादी जानकी को पहनाया। हाँ, उसको वो क्या उनका अवार्ड मिला, उनको कोई गिनी कौन से बुक में उनका नाम आ गया एशियन बुक में कि 100 वैरायटी फूल, दुनिया भर के फूलों को कितने सुंदर सुंदर फूलों का हार दादी जी को पहनाया। ये भी एक खुशी होती है कि 100 साल हम इस रूप से मनाएं दादी जी का। तो देखो धारणा क्या है फूल के समान, तो फूल में क्या होता है, चार चीजें होती है, ये मुख्य होती है चार चीजें। एक होता है उसका रूप, हाँ, कैसा सुंदर रूप होता है फूल का। फिर उसका रंग, वो भी कितना सुंदर होता है, वैरायटी रंग होते हैं। फिर तीसरा होता है उसकी खुशबू, उसका गंध, सुगंध। हर एक फूल की सुगंध भी अपनी अपनी होती है। और फिर चौथा होता उसमें रस, हाँ, इसलिए रस को चूसने के लिए भंवरे आते हैं, तो भंवरे आकर के वो रस को चूसते हैं, मधुमक्खियां आती है अपने उस रस को चूसती है, मधु बनाती है, क्या नहीं रस से भी काम होता है, गुलाब रस का जो जल होता है वो उस रस से बनता है। तो हम देखें कि फूल माना ये चारों विशेषताएं, रूप भी हो, रंग भी हो, गंध भी हो और रस भी हो, अर्थात ये सारे जितने भी आत्मा के गुण हैं या दैवी गुण हैं, अनादि गुण हैं, आदि गुण हैं। अनादि गुण है आत्मा के गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये आत्मा के अनादि गुण हैं। और आदि गुण जो देवताओं के गुण हैं, देवताओं के गुण माना जो बाबा बहुत लंबी लिस्ट निकालते हैं, 36 गुण तो मुख्य है ही है पर 108 गुण भी निकल सकते हैं, कितने गुण निकल सकते हैं, सब दैवी गुण माने जाते हैं। क्योंकि वो जो 7 मूल गुण है आत्मा के, उन गुणों को जब हम कर्म में लाते हैं वो दैवी गुण बन जाते हैं, वो आदि गुण बन जाते हैं। आत्मा में तो अनादि रूप में निहित है, लेकिन फिर हम उसको कर्म में ला करके उनको आदि गुण बनाते हैं जो दैवी गुण माने जाते हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, संतुष्टता, लंबी लिस्ट है। और उन गुणों में भी एक बैलेंस है, जैसे गंभीरता और हर्षित मुखता दोनों का सुंदर बैलेंस है। कई लोग की बहुत गंभीर होते हैं, चेहरे पर जरा भी हर्षित मुक्ता नहीं, और कई ऐसे होते हैं सारा दिन हंसते ही रहते हैं, गंभीर है भी एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते, अब अलग है। पर दोनों का ही बैलेंस हो, जितनी ही गंभीरता हो उतनी ही हर्षित मुक्ता हो, जितनी ही अंतर्मुखता हो उतना ही बाह्य में, हाँ, सबके साथ मिलनसार हो। कई इतने अंतर्मुखी होंगे वो भी अच्छा है, लेकिन सबके साथ मिलनसार भी होना चाहिए, एकांत प्रिय भी होना चाहिए, तो सबके साथ मिल करके भी सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो अकेले ही करूंगा, मुझे तो अकेला ही पसंद है, वो भी अकेला भी अच्छा है पर सबके साथ मिलकर करना भी सब बहुत अच्छा है। कई फिर कहेंगे मैं सबके साथ मिलकर ही कर सकता हूँ, अकेला नहीं कर सकता हूँ, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए गुणों में भी बैलेंस है, सब्जेक्ट्स में भी बैलेंस है। तो ज्ञान योग में अगर हम होशियार हैं परंतु धारणा हमारी इतनी नहीं है तो भी ज्ञान योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई तो पूरा है बस हम सारा दिन हम समझते हैं योगी है, पूरा दिन योग में ही बैठे हैं और कुछ भी नहीं करने को तैयार, तो वो भी तो सबको पसंद नहीं आएगा। सेवा भी जरूरी है, अगर सेवा नहीं करेंगे, केवल योग होगा, केवल ज्ञान होगा तो धारणा भी नहीं होगी। कई फिर इतनी सेवा 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 होती है जो धारणा ही रह जाती है, धारणा नहीं होती, केवल सेवा सेवा की लगन होती है। तो केवल सेवा सेवा भी नहीं, कभी अंतर्मुखी होकर के धारणा भी अपनी करनी है, देखना है अपने आप में कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है, क्या मुझे मिटाना है। तो लक्ष्य को भी देखना है, जिसको बाबा कहते हैं कि उस अनुसार लक्षण भी धारण करने हैं, बीती बातों को भी याद नहीं करना है। तो न बीती बातों को याद करना है, न दूसरों किसी को देखना है। दूसरे जो करे वो उनका हिसाब किताब, वो उनका कर्म। कई बार बाबा कहते हैं दूर की नजर बहुत तेज होती है पर नजदीक की नजर बहुत कमजोर है। कईयों की होती ना, दूर की बहुत तेज है पर नजदीक के लिए कहेंगे सॉरी जरा चश्मा चाहिए पढ़ने के लिए। और कई की नजदीक की नजर बहुत अच्छी होती है, दूर की नजर नहीं अच्छी है, तो नजदीक के लिए चश्मा उतारना पड़ता है। कईयों को ऐसे होता है, और कईयों को दूर के लिए चश्मा पहनना पड़ता है, कईयों को नजदीक के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। हर एक की नजर अपनी अपनी होती है, तो हर एक अपने आप से पूछे कि मेरी नजर कौन सी अच्छी है। दूर की नजर अच्छी माना दूसरों को देख रहे हैं, दूसरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पर मैं क्या कर रहा हूं ये देख ही नहीं रहे। और दूसरे होते केवल अपने को ही देखते हैं, अपने स्वार्थ में रहते हैं, मुझे मुझे क्या मिले, बस मुझे जो मिले बस वो मेरे लिए, बाकी जाए जहन्नम में दूसरे, मेरा क्या जाता। वो भी नहीं, इसका भी बैलेंस चाहिए, स्व सेवा के साथ साथ दूसरों की भी सेवा। क्योंकि देवता बनना माना दाता बनना, तो दाता बनना माना देवता का हाथ आशीर्वाद का हाथ है, वरदान का हाथ है। तो वरदान का हाथ कैसे दिखाते हैं, दाता का हाथ कैसे दिखाते हैं, या तो ऐसा देवी का हाथ दिखाते ना, वरदानी हाथ, या तो ऐसा या तो ऐसा। आशीर्वाद का हाथ, किसी संत के सामने जाते कहते आशीर्वाद करो, सिर उनके हाथ के नीचे रखते हैं और वह हमारे सिर पर हाथ रखता है, आशीर्वाद देता है। और या तो ऐसा जैसे लक्ष्मी का हाथ दिखाते हैं, कैसे उनके हाथ से सिक्के निकल रहे, ये भी दाता का हाथ है। और ऐसा कैसा है, ये कौन सा हाथ है, ये कौन सा हाथ है, ये भिखारी का हाथ है। तो भिखारी का हाथ तो नहीं होना ना, हमारा तो दाता का हाथ है। तो ये आशीर्वाद और दाता का हाथ है, ये हाथ किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता है। अगर मेरा हाथ चल पड़े या किसको थप्पड़ मार दे तो ये आशीर्वाद का हाथ थोड़ी होगा, वो तो दुख देने वाला हाथ होगा। इसीलिए हाथ उठे पर किस लिए उठे, आशीर्वाद देने लिए उठे, दुआ देने लिए उठे, वरदान देने लिए उठे। पर कौन दे सकता है दुआ, कौन दे सकता है वरदान, कौन दे सकता है आशीर्वाद, कौन बन सकता है दाता, जो स्वयं भरपूर होगा। जो खुद ही खाली है वो क्या देगा, उसके हाथ तो ऐसे ही होंगे। फिर क्या कहेंगे, दे दाता के नाम, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो। हम ऐसे कहेंगे क्या, ईश्वर के नाम पर दे दो, ईश्वर हमें इतना भरपूर कर रहा है, हमारे द्वारा ही सबको दे रहा है। तो इसीलिए चारों सब्जेक्ट्स में इक्वल, तो ज्ञान है बीज, योग है उसको सींचना, और धारणा है उसमें से जो फूल जिसमें रंग रूप गुण और गंध और रस भरा हुआ हो। और सेवा क्या है, सेवा है फल, क्योंकि फूल से ही फिर फल निकलता है, और फल हमेशा रसदार होता है। कच्चा फल तो खाया भी नहीं जा सकता है, रसदार बने, पक जाए, रस उसमें आ जाए तो मीठा बने। तो धीरज का फल मीठा होता है, तो धीरज का फल मीठा माना सेवा करो और दरिया में डालो, नेकी कर दरिया में डाल। सेवा सेवा सेवा, सेवा का मुझे फल अभी नहीं चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष फल एक सेकंड में मिलता है, हम नहीं मांगते हैं। प्रत्यक्ष फल कौन सा मिलता है, खुशी। नहीं तो क्या समझते, हमने इतनी सेवा की, किसी ने पूछा भी नहीं, किसने मेरी महिमा भी नहीं की, किसने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं दिया, किसने मुझे मेरी थकावट भी नहीं पूछी कि मैं थक तो नहीं गया हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, किसी को परवाह भी नहीं है। अरे परवाह थी उस पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया, बाकी कोई परवाह करे न करे, बाकी कोई चाहिए क्या? तो अगर सेवा की और उसका फल हम चाहते हैं तो वो फल उसका अंदर में इच्छा, फल की इच्छा वही सेवा का पुण्य खत्म कर देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कर सेवा तो मिले मेवा, उसकी बजाय सोचो सेवा ही मेवा है। जो सेवा है वही मेवा है, क्योंकि जितनी सेवा करते उतनी जो खुशी मिलती है, सबकी जो दुआएं मिलती है वही मेवा है खुशी। और हमको चाहिए क्या? इंसान जो कुछ कर रहा है खुशी के लिए कर रहा है, और वो खुशी सेवा से मिल गई, दुआएं मिल गई, मांगी नहीं, वो अपने आप मिलती है। मांगने से नहीं मिलती दुआएं, अपने आप मिलती है, हम दिल से करें तो। देखो वो दुआएं ही हमें खुशी की खुराक देगी, जो हमारी आंख किसी में भी डूबेगी नहीं। ये है चार सब्जेक्ट्स का पूरा बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी, भगवान की भी आशीर्वाद मिलेगी, बाबा के परिवार की भी आशीर्वाद मिलेगी, और जिनकी सेवा करेंगे उनकी भी आशीर्वाद मिलेगी। तो कितनी दुआओं का भंडार से हम भरपूर हो जाएंगे, ऐसे भरपूर दाता के बच्चे भी भरपूर बन जाएंगे, यही बाबा की हम बच्चों में आश है। हाँ, इस आश को पूर्ण करना है ना, सब पूर्ण करेंगे ना। तो अभी बाबा आएंगे, 12 तारीख को आएंगे या 10 तारीख तो हो गई, तो बाबा को दिखाएं हम कि बाबा हम आपकी आश जरूर पूर्ण करेंगे। जो भी आपकी आश है हमारे अंदर, हम बच्चे ही तो पूर्ण करेंगे, और कौन करेगा? कोई दुनिया वाले थोड़ी करेंगे, उनको तो पता ही नहीं है। पर हम बच्चों ने बाबा को पहचाना है, हम बच्चे बाबा के बने हैं, बाबा का वरदान मिल रहा है, तो हम बच्चे ही बाबा की सब आशाएं पूर्ण करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए 3 मिनट फिर से बाबा की
आपको मिले।